यः पश्यते स पश्यते समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनयत्सो विनश्यत्सो अविनश्यन्तम् अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्वविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्वविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्वविनश्यत्तम् विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति रिपीट् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्वविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति हाँ शब्दार्थ समाम संभाव से सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों में तिष्ठन् तिष्ठन्तं वास करते हुए परमेश्वरं परमात्मा को विनश्यत्सो नाशवान् अविनश्यन्तं नाशरहित यह जो पश्यते देखता है सह वही पश्यते वास्तव में देखता है। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य अनुवाद। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि यह नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है वही वास्तव में देखता है। मेरे पीछे बोले, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है वही वास्तव में देखता है। हाँ तात्पर्य, जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को शरीर शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाने जाते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतर कर जाता है, इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। तो जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित प्रिय देवियों एवं सज्जनों, प्रस्तुत श्लोक में शरीर और इस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है कि जो शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा का निवास होता है, जिनका कभी नाश नहीं होता है, और जो आत्मा और परमात्मा के बारे में जानते हैं, शरीर के बारे में, वास्तव में वही आत्मा को परमात्मा को देख सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रकृति पुरुष और चेतना शीर्षक है, याद रखिए। शरीर क्या है? शरीर के अंदर जो आत्मा है परमात्मा है वे कौन है? शरीर किसे कहा जाता है, अर्थात आत्मा किसे कहा जाता है, परमात्मा किसे कहा जाता है? शरीर और शरीर का स्वामी तथा आत्मा के मित्र जिसको परमात्मा कहा जाता है, एक साथ संयुक्त माने देखता है कि आत्मा परमात्मा दोनों हृदय के माने शरीर के वाम भाग में हृदय के अंदर किस तरह से बैठे हुए हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठते, वही वास्तव में आत्मा परमात्मा को देखता है। आत्मा और परमात्मा को ऐसे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। अब शरीर तो भौतिक है, सभी लोग देख रहे हैं शरीर को, तो शरीर के अंदर जो आत्मा और परमात्मा है वे आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक तत्व को आप आध्यात्मिक विधि से जानकारी कर सकते हैं, ऐसे नहीं। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में बताया है कि आत्मा और परमात्मा को मुझे वही व्यक्ति जान सकता है जो मेरी भक्ति से युक्त है, जो मेरी भक्ति करता है। भक्त्या माम अभिजानाति, प्रेम रूपी अंजन से भक्ति के माध्यम से हम आत्मा और परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ईश्वरस्तर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो भगवान जो परमात्मा समस्त आत्मा के मित्र हैं और आत्मा के साथ किस तरह से वे हृदय में अवस्थित हैं, उन्हें हम भक्ति के माध्यम से देख सकते हैं। भक्ति क्या है? नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विश्रोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। भक्ति के माध्यम से भगवान देखे जाते हैं। जैसे दूध के अंदर मक्खन है, काष्ठ के अंदर अग्नि है, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं देख सकते। तिल के अंदर तेल है, उसका दर्शन आप ऐसे नहीं कर सकते। दूध को आप सभी देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मक्खन है वो तो दिखाई नहीं देता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि इस मक्खन को हम देख सकते हैं कि नहीं, इसके अंदर मक्खन है कि नहीं, तो आप क्या उत्तर देंगे? पहले तो आप यही बोलेंगे ना, इसके अंदर मक्खन नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि नहीं, इसके अंदर मक्खन है या इसके अंदर माखन है। कैसे आप उसका दर्शन कर सकते हैं? उसकी विधि है, दूध को जोरन दीजिए, दही जमाइए, जोरन दीजिए, दूध को गर्म कीजिए, जोरन दीजिए, थोड़ा सा खट्टा पदार्थ अम्ल पदार्थ डालिए तो दूध दही के रूप में परिणत हो जाता है, जम जाता है। फिर उस दही का मंथन कीजिए तो उसमें से माखन निकल आता है, फिर माखन का दर्शन हो जाता है। अब उस माखन से आप पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन दूध से पूड़ी नहीं बना सकते। माखन सार तत्व है, तो दूध के अंदर माखन व्याप्त है, काष्ठ के अंदर अरणी के अंदर अग्नि है, अरणी को लोग मंथन करते हैं, रगड़ करते हैं, या माचिस के अंदर अग्नि है, घर्षण करिए तुरंत अग्नि प्रकट हो जाएगी। घर्षण तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, भगवान कणकण में है, जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंह देव ने दर्शन दे दिया, खंभे से फाड़कर भगवान निकल गए, कणकण में है। तो भगवान कणकण में है, लेकिन दर्शन कैसे देते हैं? भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति करके हम भगवान को जान सकते हैं। और आत्मा आध्यात्मिक है, परमात्मा आध्यात्मिक है, जिनका शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना हुआ है, क्षितिजल पाव गगन समीर पांच तत्वों से नहीं, सतगन चितगन आनंद घन से बना हुआ है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, परमात्मा का अंश है, वह भी सतगन चितगन आनंद घन है। और परमात्मा जो है वह भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, और भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं। भगवान कृष्ण ही बलराम जी के रूप में आए हैं, बलराम जी से संकर्षण अवतार हुआ, उससे पुरुष अवतार हुआ, करणोदकशाही गर्भोदकशाही क्षीरोदकशाही, और गर्भोदकशाही से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। गर्भोदकशाही विष्णु कि नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा से मनुष्य रूपा का जन्म हुआ। अनेक चर अचर प्राणी रचे गए। कहने का भाव है, मूल भगवान है। तो जो आत्मा है और परमात्मा है, आत्मा इसमें आपको जानना है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन तीनों के बारे में जानकारी करना आपको जरूरी है। क्योंकि अर्जुन पहले ही इसमें प्रश्न कर रहे हैं, पर अर्जुन का ये प्रश्न है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय किसे कहा जाता है, अर्जुन का प्रश्न है इस गीता कितनेवें अध्याय में। तो शरीर क्या है, अब क्रमानुसार सुनिए, शरीर क्या है, अभी तक सुने कि आत्मा को, वही वास्तव में आत्मा को देखता है। कौन? पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपने, पढ़े नहीं श्लोक? जो पंडित होता है वो गाय हो, हाथी हो, चाहे चंडाल का शरीर हो, सबके अंदर वो भगवान को देखता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति से युक्त है, भगवान उसको सब जगह दिखते हैं। तो भक्ति के माध्यम से आप साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भक्ति में वो शक्ति है। प्रहलाद महाराज जी भक्ति करके खंभे से भगवान नृसिंह देव को प्रकट करा दिया। जो हिरण्यकश्यपु नास्तिक था, वो नहीं जानता था कि खंभे के अंदर भगवान है, लेकिन जब प्रकट हो गए, दर्शन कर लिया, तो उसको विश्वास हो गया कि भगवान वास्तव में कणकण के अंदर है, कणकण में है भगवान। अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान स्वतः दर्शन देते हैं। तो हम आत्मा को परमात्मा को देख सकते हैं भक्ति के माध्यम से। देखने की विधि भक्ति है। और अब भक्ति किस तरह करनी है, अब भक्ति करने में अब आपकी योग्यता होनी चाहिए। निश्चल भक्ति करें, पारस पत्थर उसी को सोना बनाएगा, उसी लोहा को सोना बना सकता है जो छल कपट से रहित हो। समझ रहे हैं ना? अगर बिजली की तार में कवर हो तो करंट आपको नहीं लगेगी, आप समझ रहे हैं? अगर कवर को हटा दिया जाए अब टच करें तुरंत करंट लगेगी। साधु संघ में आइए लेकिन इस कपट भाव से आइए, छल कपट मत रखिए, छल कपट को त्याग करके आइए। पारस पत्थर माने लोहा के अंदर कपड़ा बांध दीजिए, इसे छुए तो सोना नहीं बन पाएगा। लोहा को सोना बनाता, कपड़ा लपेट करके इसे स्पर्श कराइए, कपड़ा मतलब अपने छल कपट से बिल्कुल रहित होइए। जो नियम है नियम का वास्तविक रूप से पालन करिए। हम आत्मा और परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकते, ऐसे भी आप देख रहे हैं, आप बात करना चाहें तो बात कर सकते। भगवान एक ही है। मिथिला में जब भगवान गए राम रूप में, भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न रूप में देखा। मथुरा में जब भगवान कृष्ण गए तो मथुरा रंगशाला में, तो ये कहीं भगवान को भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न रूपों में देखा। कोई कोई भगवान को शिष्य के रूप में देख रहे हैं माता पिता लोग, कोई मित्र के रूप में देख रहा है, कंस काल के रूप में देख रहा है, अपने शत्रु के रूप में देख रहा है, इनका शरीर तो वज्र के समान कठोर है। एक ही भगवान भिन्न भिन्न रूप में देख रहे हैं। तो जिनकी जैसी भावना होती है भावना के अनुसार भगवान दर्शन देते हैं। और आपकी भावना में, यदि आपकी भावना कृष्ण भावना से बिल्कुल सजा हुआ है, कृष्ण भावना से जुड़ा हुआ है, तो आप भगवान को कहीं भी दर्शन कर सकते हैं। तो भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता, आत्मा को देख सकता। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया। भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिक तत्व को आध्यात्मिक विधि से जान सकते हैं, दूसरी कोई बुद्धि नहीं। और आध्यात्मिक विधि यही भगवान की भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ने सारी शक्ति अपने नाम में भर दिया है। नाम जपने से हैं भगवान भक्त को दर्शन दे देते हैं। नाम के बस में, भक्ति के बस में भगवान है। अब आगे आइए, शरीर आत्मा और परमात्मा ये तीन चीज मुक्त है। मतलब इस प्रसंग में ये तीन बातें बताई गई है। शरीर किसको कहते हैं? शरीर जिसमें छह रूपांतर होते हैं, जो जन्म लेता है, जायते वर्धते जो कुछ काल तक ठहरता है, तिष्ठते नहीं, जायते माने जन्म लेता है, वर्धते माने बढ़ता है, तिष्ठते कुछ काल तक ठहरता है, परिणामते कुछ प्रभाव दिखलाता है, संतान उत्पत्ति करता है, बिल्डिंग बनाता है, परिणामते फिर क्षयति छीड़ होता है, बूढ़ा हो जाता है, अंत में विनश्यति मर जाता है। तो शरीर जन्म लेता है और शरीर का मरण होता है, आत्मा का नहीं। शरीर मतलब नश्वान, जो पांच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये शरीर में पांच तत्व हैं, ये पांचों भौतिक तत्व हैं, याद रखिए। शरीर में पांच तत्व है, पृथ्वी जैसे चमड़ी है, ये पृथ्वी है। शरीर को शरीर की तीन गति होती है, क्रिमि बीट भस्म में बदल जाता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो यह शरीर मर जाता है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर भौतिक है। भौतिक मतलब नश्वर, जो पांच तत्वों से बना है। तो शरीर को जब शरीर मर जाता है, इसमें से आत्मा जब निकल जाता है तो शरीर मर जाता है, तो फिर शरीर को क्या किया जाता है? शरीर को श्मशान में ले जाया जाता है, उसको जला दिया जाता है, तो राख में परिणत हो जाता है। गाड़ दिया जाता है तो फिर क्या, कीड़े मकोड़े में जब गाड़ दिया जाता है तो धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है तो कीड़े मकोड़े में बदल जाता है। ऐसे शरीर को फेंक दीजिएगा कहीं भी, कुत्ते श्रृंगार इत्यादि खाएंगे तो बिड मल के रूप में बदल जाता है। ये शरीर की गति होती है। तो शरीर जो है आत्मा को रहने के लिए एक स्थान है, याद रखिएगा। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति दो प्रकार की है, एक जड़ प्रकृति और दूसरा चेतन प्रकृति। प्रकृति मतलब भगवान की शक्ति, जो प्रकृति प्रकट दिखाई दे रही है, पृथ्वी जल, गीता का सत्वाध्याय पढ़िए, उसमें भगवान ने प्रकृति का वर्णन किया है। भूमि आप लो आओ खम मनोबुद्रे वच अहंकारम इतियम में बिना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की प्रकृति है जिसे जड़ प्रकृति कहा जाता है, और ये है अपरा प्रकृति। जड़ प्रकृति ऐसे कुछ नहीं कर सकती, और ये इस जड़ प्रकृति के अंदर आत्मा और परमात्मा का निवास है, दोनों याद रखिए। तो जो जड़ प्रकृति है ऐसे कुछ नहीं कर सकती है, और दूसरा है चेतन प्रकृति जिसको हम पारा प्रकृति कहते हैं, जिसमें चेतना है, एक पारा प्रकृति, दूसरा अपरा प्रकृति। प्रकृति माने शक्ति, हम भगवान की शक्ति हैं, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, हम तो तटस्था शक्ति, जीव भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, अंश माने भगवान का पुत्र है। तो जड़ प्रकृति, तो आत्मा ऐसे ही संसार में नहीं रह सकता है, उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए, तो नश्वर शरीर दिया गया है, ये पांच भौतिक शरीर है। इसी शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास रहता है। नश्वर पदार्थ है, उसका रहने का आश्रय है। जैसे आप हॉल के अंदर बैठे हैं, तो आप हॉल के अंदर, मैंने हॉल नहीं है, हॉल से बाहर चले जाइए, हॉल जस का तस खाली हो जाएगा, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। जैसे पिंजरा है, पिंजरे के अंदर तोता है, तोता अलग है, पिंजरा उसका रहने का निवास स्थान है। उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा का रहने का जो आश्रय है, आत्मा का रहने का जो निवास स्थान है, यह भौतिक शरीर है जो नश्वर है, और इसी शरीर के माध्यम से हम आत्मा को जान जा सकते हैं। शरीर एक साधन है, याद रखिएगा, नश्वर है लेकिन यह आपके मुक्ति का मार्ग, साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इस शरीर के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं, और भगवान के द्वारा दी हुई, भगवान के द्वारा दिया हुआ ये है, एक कृपा है, एक साधन है, जिनके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जड़ पदार्थ से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये साधन है। इसलिए शरीर को बिल्कुल सही रखना है, है? जब तक शरीर है, स्वस्थ है, तब तक भगवान की भक्ति कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस शरीर में परिवर्तन होता है। एक समय हम लोग बालक थे, कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त तरण बोयति। इस शरीर में देहांतर होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। एक समय हम लोग सब बालक थे, फिर युवावस्था में आए, फिर बुढ़ा अवस्था में आ रहे, इसके बाद अंत में क्या होगा, शरीर मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उसी प्रकार से शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसका भी देहांतर हो जाता है, माने एक देह से दूसरे देह में चला जाता है, दूसरी जोनी में चला जाता है। तो वो आत्मा क्या है, शरीर तो नश्वान है। अच्छा, ये शरीर है किसका, एक्चुअली में शरीर जो है वास्तव में ये भगवान का ही है, प्रकृति भगवान की है। स्थितिजल पावक गगन समीरा, जो पांच तत्व हैं, और जो स्वर्ग है, मेन भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया गया है, और स्वर्ग है ना, जिसमें आपके 24 तत्वों का वर्णन है, मूल जो विषय है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको भगवान ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने भी नहीं रचा है। तो ये प्रकृति के अध्यक्ष, प्रकृति के डायरेक्टर भगवान है, और यह जो प्रकृति है भगवान के डायरेक्शन में कार्य करती है। मैया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानी ने कौनते जगदीव परिवर्तित। प्रकृति के अध्यक्ष, प्रकृति के डायरेक्टर कौन है, भगवान। जैसे हम प्रकृति के अधीन है और प्रकृति भगवान के अधीन है, तो दो प्रकार की प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, और दोनों का नियामक कौन है, भगवान है, याद रखिए भगवान है। तो दोनों को नियामक भगवान है, नियामक मतलब जो उन पर नियंत्रण करते हैं। जैसे आप बूढ़ा होना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हम बूढ़ा हो जाए, लेकिन फिर भी आपको बूढ़ा होना पड़ता है, क्यों, कोई मरना नहीं चाहता है, फिर भी आप क्यों मर रहे हैं कि नहीं, मतलब आप दूसरे के अधीन है, प्रकृति आपको एक दिन मार डालेगी, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर भी एक प्रकृति है, जड़ प्रकृति है प्यारे बंधुओं, और जड़ प्रकृति के अंदर आत्मा उपभोक्ता है, और भगवान शरीर और आत्मा दोनों के परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। आत्मा और परमात्मा दोनों की भोक्ता, मूल भोक्ता कौन है, भगवान। आप अपने शरीर की बात को जान सकते हैं लेकिन सबके शरीर को आप नहीं जान सकते, और भगवान सबके शरीर की बातों को जान जाते हैं। वो परमात्मा है, परमात्मा है, जिसे आत्मा निकलती है वो है परमात्मा। आत्मा मतलब अमर, जो कभी मरता नहीं उसको जीव बोलते हैं। जीव मतलब जो सदैव जीवित रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसको हम आत्मा बोलते हैं। और परमात्मा हम अड़ू आत्मा है, परमात्मा मतलब उससे बड़ी आत्मा, जिसे आत्मा प्रकट होती है। आत्मा भी अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। भगवान भी अजन्मा है, और जो भी सन भी आत्मा, उनका भी जन्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान सबके माता पिता है। पिता अहम अस्य जगतो माता तथा पितामह, भगवान का वास्तव में कोई माता पिता नहीं है, सबके माता पिता भगवान है। लेकिन भक्ति की भावना से भावित होकर के भगवान किसी भी भक्त का माता पिता बनना स्वीकार करते हैं। जैसे यशोदा मैया है, नंद बाबा है, ये तप किए, तप के माध्यम से भगवान प्रसन्न हुए, गए वरदान मांगो, क्या कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान कहे कि मेरा जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या अदिति माता, आप देख लीजिए सब क्या भगवान है। भक्ति की बस, भगवान के समान कोई नहीं है। भगवान वास्तव में अजन्मा। तो आत्मा और शरीर को तो बात, शरीर के बारे में आप समझ गए। प्रकृति मतलब जड़ प्रकृति है, शरीर नस्वान है, लेकिन इसके माध्यम से हमें भगवान को जानना है। अच्छा, अब आत्मा और परमात्मा दो बातें रह गई। आत्मा परमात्मा का अंश है, माने भगवान का अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, भगवान कहते हैं कि जीव मेरा अंश है और सनातन नित्य अंश है, अंशी नहीं है। और आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता है। आत्मा और परमात्मा दो दो हैं, याद रखिए, आत्मा और परमात्मा दो है। ये नहीं कि आत्मा ही परमात्मा है। अगर ऐसा कोई फिलासफी बोलता है तो गलत बोलता है, माने उसको आत्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, याद रखिए। लेकिन शरीर, शरीर के अंदर जो आत्मा है भोगता है, तो शरीर जैसे आप बूढ़ा, शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, तो आत्मा है जो आत्मा शरीर को मैं मान लिया है, तो आत्मा अनुभव इतना करता है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, मैं बोलते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूं, इतना तो उसको ज्ञान है, एक दिन शरीर मर जाएगा, जानकारी तो होती है। तो उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा, परमात्मा जो कभी बूढ़े होते नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं, परमात्मा कभी नहीं मरते, वह अजन्मा है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। तो उनको जानना है कि आत्मा क्या है। आत्मा भगवान के, भगवान का अंश है। और परमात्मा, परमात्मा जो आत्मा के मित्र हैं, जो कभी भी जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। इस उपनिषद में उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हों, एक खाने वाला एक देखने वाला है, उसी प्रकार से भगवान ऐसे आपके मित्र हैं जो आत्मा के साथ में रहते हैं। अगर आत्मा के साथ परमात्मा न रहे तो यह शरीर चलायमान नहीं होगा, यह शरीर सक्रिय नहीं होगा। जैसे जैसे टेम्पुल हाल है या झालर, जल झालर को देखिए, इससे प्रकाश आ रहा है, ये उपकरण है, लेकिन बिजली तो पावर हाउस से आ रही है। अगर पावर हाउस से बिजली कट कर दी जाए तो ये जितने वो उपकरण है, झालर मालर टायर जितने भी लाइट है, सब ऐसे ही रह जाएंगे, इसमें रोशनी नहीं आएगी। तो जब तक से शरीर के अंदर परमात्मा का वास नहीं हुआ, आत्मा के रहते हुए भी, तब तक शरीर चलायमान नहीं हुआ। माने सब कुछ, सभी सभी शक्तियों के स्रोत भगवान है। तो आत्मा के साथ परमात्मा है जो जीव के साक्षी हैं, मित्र के रूप में रहते हैं। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपके अच्छे कर्मों के, आपके बुरे कर्मों के साक्षी परमात्मा है, जो आपको देखते हैं और माना भी करते हैं। जैसे इसी शरीर के अंदर आप देखिएगा, इसी चैप्टर के अंदर बताया गया है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, 23 श्लोक में, 23 श्लोक में इसमें वर्णन है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। कहते हैं कि जो इस शरीर में एक अन्य दिव्य आत्म भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी के रूप में अनुमति देने वाला है, जो आपको अनुमति देता है, आप अच्छे कर्म करने चले चाहे बुरे कर्म करने चले, आपके सभी कर्मों के साक्षी परमात्मा है, जो आत्मा के मित्र हैं, जो आपके हृदय में रहते हैं और दो प्रकार से आपको गाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर, यदि आप, आपको ऊपर से गाइड करते हैं गीता भागवत के रूप में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, गीता के 16 अध्याय में भगवान ने बोला, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है कि आपका वास्तविक कर्म क्या है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे है ना, चार आश्रम है, वर्णाश्रम है, उसके कर्तव्य क्या है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र बताएगा, उसके अनुसार आपको कर्म करना चाहिए, आपका कर्तव्य बताया गया है। तो तस्मात् शास्त्रम, शास्त्र के रूप में भगवान ऊपर से गीता भागवत के रूप में गाइड करते हैं कि जीव मेरा अंश है, मैं अंश हूं, इसलिए वो मेरा पुत्र है, इसलिए जीव को मेरे शरण में आना चाहिए। जब मेरे शरण में आएगा तो आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाएगा और सदा के लिए सुखी हो जाएगा। और आने की विधि यही है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो परमात्मा साथ में रहता है, आपका मित्र है, वो आपका साथ नहीं छोड़ता लेकिन आपको अनुमति देता है। एक शास्त्र के रूप में अनुमति दे रहा है और अंदर से परमात्मा के रूप में अनुमति दे रहा है। कैसे विचार कीजिएगा, जब आप बुरे कर्म के लिए चलते हैं, कुमार पर पांव रखते हैं, चोरी करने के लिए चलते हैं, कुकर्म करने के लिए चलते हैं, तो आपके अंदर धकधकी होती है कि नहीं, बोलिए। चोर चोरी करने चलता है तो उसको डर होता है कहीं हम पकड़ा न जाए, अब बुरे कर्म करने के लिए चलेंगे तो यहां भी धकधकी होगी। तो परमात्मा आपको गाइड करता है, खबरदार सावधान। लेकिन फिर भी आपको भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया है, उस स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग कर देते हैं और परमात्मा के आदेश को टाल देते हैं, मैं जाऊंगा, तो परमात्मा कहता नहीं मानोगे, नहीं धकधकी है वही माना किया जा रहा है, समझ रहे हैं, नहीं तो जाओ, जैसा करोगे वैसा पाओगे। उदाहरण के लिए जैसे रोड पर सिग्नल लगा है, रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल का मतलब क्या है, सरकार की व्यवस्था है, आपको रुकना है, सिग्नल को तोड़ना नहीं है, तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, कि तो खतरा होगी, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी, फाइन मारेगी, मारेंगे कि नहीं आप देख लीजिए। तो परमात्मा तो गाइड कर रहा है आपको, लेकिन आप मानेंगे नहीं परमात्मा की बात को, मनमाना करेंगे तो आपको वहीं पर जमदूत पकड़ेंगे और दंडित होंगे। तो जीव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है और अहंकार वश अहंकार भी मूढ़त्मा करता हम इति मनते, अहंकार में आकर के भगवान के आदेश को भी ठकुरा देता है और कुमार पर पांव डाल देता है, जिसके चलते वो खतरा में पड़ जाता है। तो जीव प्यारे बंधुओं परतंत्र है, भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। यदि सदुपयोग करेगा तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। और सदुपयोग यही है कि कली की जो चार महान पाप हैं निषेध में, उसको नहीं करना है, मांस भक्षण, परिस्त्रीगमन, धूम्रपान है, खैनी बीड़ी गाजा भाग इत्यादि द्यूत क्रीड़ा का निषेध है। और करना क्या है, 16 माला जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गीता भागवत पढ़िए, घर में भगवान का फोटो रखिए, अर्चन पूजन करिए, भगवान को भोग लगा करके उनका प्रसाद ग्रहण करिए। इस विधि को यदि अपनाएंगे तो आपका परम कल्याण होगा। तो सदुपयोग करना चाहिए, मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो शरीर को, यह मानव शरीर जो है आपका सबसे बड़ा धन है, यह कर्म क्षेत्र है, इसको कर्म क्षेत्र बोला गया, क्षेत्र क्षेत्र माने मैदान, फील्ड होता है, फील्ड खेत में लोग काम करते हैं ना, धान गेहूं चावल की उत्पन्न सब उत्पन्न करते हैं, हैं हल जोतते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पन्न करते हैं। तो शरीर से आप विभिन्न प्रकार के कर्म और कुकर्म करते हैं, कर्म अकर्म विकर्म सब कर्म आप करते हैं। तो शरीर प्यारे बंधु कर्म का क्षेत्र याद रखिए। तो इस शरीर से ऐसा हमको शुभ कर्म करना है, सत्कर्म करना है, शुभ कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो इस शरीर से हमें भगवान को दान दीजिए, भगवान का नाम जप करिए, भगवान की कथा सुनिए, शरीर को भगवान की सेवा में लगाइए जबरदस्ती। एक दिन तो जलने वाला है, मरने वाला है, इसलिए जबरदस्ती शरीर को घसीट करके भगवान की सेवा में लगाइए, तब यह शरीर आपका सार्थक होगा, नहीं तो एक दिन अग्नि में तो जल जाएगा, आपका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। वह देह नहीं कब हो जिसने जग में प्रभु का जकिया ही नहीं, वह टूट पड़े रसना जिसने हरि नाम सुधा बरसाया नहीं। करें कि वह देह नहीं है जिसने भगवान की सेवा नहीं किया, या भारतवर्ष में एक गिद्ध भी भगवान की सेवा करता है, एक पशु भी भगवान का नाम लेता है, गजेंद्र ने भगवान का नाम लेकर पुकारा, जटाऊ ने भगवान का नाम लेकर के पूरा पुकारा, सोचिए भारतवर्ष से प्यारे बंधुओं, तो फिर एक पशु और पक्षी भी भगवान का नाम लेते हैं, हम तो मानव हैं, हम क्यों नहीं भगवान का नाम ले सकते हैं? अवश्य लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह देह नहीं कबहूं जिसने जग में प्रभु काज किया ही नहीं, वह शरीर किसी काम का नहीं है जिसने भगवान की सेवा नहीं किया, आपका शरीर व्यर्थ चला गया। वह टूट पड़े रसना जिसने, वह जीवा टूट करके गिर जाए जो जीवा भगवान का नाम नहीं जपती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। वह धन किसी काम का नहीं जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है, जो नहीं लगता है। और वह कहा जाता है कि अंत में जो शरीर है, यदि शरीर से मैंने भगवान को प्राप्त नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवत धाम को नहीं प्राप्त किया, तो समझ लीजिए कि इस जीवन में हमने कुछ नहीं कमाया, हमारा जीवन ऐसे ही बीत गया। हम पृथ्वी पर भार स्वरूप है, जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानती प्राण। इस पृथ्वी पर भी हम जीते हुए भी मरे हुए हैं, हमारे जीने की कोई गिनती नहीं है, पृथ्वी पर भार स्वरूप है। ये जो तबला है ना, तबला और मृदंग, चाणक्य पंडित ने कहा है कि तबले और मृदंग ये भी चाम के बने हुए हैं, मिट्टी और चमड़ी से बना हुआ है तबला। धिक्तान धिक्तान धिकेतान, एक ये तबले से आवाज आती है, अरे संसार के मनुष्यों ध्यान से सुन लो, कहते कि हम भी एक चाम है जो भगवान की सेवा में बज रहे हैं। सदुपयोग करें, मेरा जीवन तो सार्थक है, ये शरीर भी चाम का बना हुआ है, इसलिए तुम्हें जितना हो सके उतना भगवान का नाम जप कर लो, भगवान की सेवा कर लो, शरीर को प्रकार में लगाओ, तभी शरीर का महत्व है, नहीं तो इस शरीर को आपके धिकार है जीने से कोई फायदा नहीं। इसलिए शरीर एक साधन है प्यारे बंधुओं, इस शरीर से हम सभी भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लें। अब देखिए पुनः भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान का दर्शन करें, दर्शन करने से जीव वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और भगवान धाम जाकर के सदा के लिए सुखी हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर हरि प्रेमानंदे हरे हरे बोल। अब आप सभी दर्शन के लिए खड़े हो जाइए। हरे कृष्ण।